गेट चालू गेट बंद करो
और उसके ऊपर कहाँ पे हवा जा रही है ज़रा चेक करो कहीं ऊपर किसी को लगा। हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर द्वारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर द्वारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना यमुना तीरन रे राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवर द्वारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर द्वारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे
जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता प्रभुता निखर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निखर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कान विविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा इसकी आवाज कल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में लाखों भक्तों ने जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के अलग अलग रथों को खींचकर जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर ले गए और ऐसा वर्णन है कि लाखों लोग थे कल वहाँ पर। बहुत विशेष ये रथ यात्रा थी। ऐसी रथ यात्रा ये 19 वर्ष के बाद अब हुई थी कल, इसीलिए सभी लोग इसमें भाग लेने के लिए आए। देश विदेश से लोग आए, सारे भारत से लोग आए, देवी देवता आए। पुराणों में वर्णन है जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो देवी देवता वेश बदलकर हजारों की संख्या में वहाँ पर उपस्थित होते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर आए, लाखों लोगों ने कल रथ यात्रा महोत्सव को मनाया। तो कल की विशेषता क्या थी? पिछले रविवार को आप लोग थोड़ा बहुत रथ यात्रा के विषय में सुन चुके हैं, तो इसीलिए रथ यात्रा कैसे होती है इस पर तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कल की विशेषता थी नव कलेवर, अर्थात जगन्नाथपुरी में ही केवल वहीं ऐसा होता है कि जिस वर्ष में अधिक मास आषाढ़ महीने के बीच में आता है, अर्थात अधिक मास प्रारंभ होने के पहले आषाढ़ महीना होता है और अधिक मास समाप्त होने के बाद भी आषाढ़ महीना होता है, ऐसे वर्ष में भगवान के विग्रह को बदला जाता है और ये प्रायः 12 से 19 वर्ष के बीच में होता है। कभी कभी अधिक मास आषाढ़ महीने में 12 वर्ष में आ जाता है, कभी 13, कभी 15, कभी 17 और कभी 19 वर्ष। तो इस बार 19 वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि अधिक मास आषाढ़ महीने में आया, अर्थात पहले भी आषाढ़ महीना और उसके बाद भी आषाढ़ महीना, और इसीलिए नव कलेवर अर्थात भगवान को नया शरीर प्राप्त कराना। वैसे भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये केवल लीला के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम सब के शरीर और आत्मा में अंतर है, ऐसा अंतर भगवान में नहीं है। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक हैं। वैसे मूल रूप में जीव भी ऐसे ही है। हम सब की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है मुक्त अवस्था में। केवल बद्ध अवस्था में इस भौतिक जगत में हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर होता है। लेकिन फिर भी लीला के लिए भगवान जगन्नाथ इस सेवा को भी स्वीकार करते हैं। तो नव कलेवर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होता है जगन्नाथपुरी में। इसकी शुरुआत होती है कई महीने पहले। भगवान के भक्त भगवान के नए विग्रह को खोजने के लिए नीम के एक पेड़ से बनता है और वो विशेष पेड़ होता है, तो उसको ढूंढने के लिए कई दिनों तक भक्तों का दल प्रयास करता है। जगन्नाथपुरी मंदिर से एक भक्तों के दल को प्रयास किया जाता है कि वो जाएं,
और जो उनके प्रमुख होते हैं उनको जगन्नाथ जी को एक बहुत बड़ा हार पहले अर्पण किया जाता है जिस दिन ये लोग जाते हैं, फिर वही हार भगवान का महाप्रसाद फिर वो उनके गले में डाला जाता है। दरअसल ये जो हार हम लोग डालते हैं प्रवचन के पहले या वरिष्ठ भक्तों को, ये कोई नेताओं को डालने वाला हार नहीं होता है। जैसे बाहर हम लोग देखते हैं कोई नेता आते हैं, लोग हार डालते हैं उनको, उसका कोई मूल्य नहीं है। ये हार इसलिए पहना जाता है क्योंकि ये जगन्नाथ जी को अर्पण किया गया है, भगवान को अर्पण किया गया है, और ये अब भगवान के प्रसाद के रूप में हम लोग इसको ग्रहण करते हैं, भगवान की कृपा के रूप में। अन्यथा ये हार का कोई मूल्य नहीं है। अगर ये जगन्नाथ जी को नहीं पहनाया जाए तो फिर किसी भक्त को ऐसा कोई हार नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जब जगन्नाथ जी को अर्पण हो जाता है तो प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है, और विशेष करके प्रवचन इत्यादि के पहले, ताकि हम भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान के विषय में कुछ बोल सकें। इसी तरह जगन्नाथपुरी में भगवान के विग्रह को ढूंढने जाने से पहले भगवान की कृपा प्राप्त की जाती है, और ये हार उनके गले में तब तक रहता है जब तक भगवान के विग्रह जो बनने वाले हैं वो वृक्ष मिल नहीं जाता, और फिर उसको निकालकर उस वृक्ष को अर्पण किया जाता है। तो ऐसे वे चलते हैं जगन्नाथ जी की कृपा याचना करके, कृपा प्राप्त करके, फिर वो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला स्थान होता है उड़ीसा के राजा गजपति, उनके स्थान पर, उनके राज्य में, उनके महल में जाकर रुकते हैं। दो दिन तक वे वहाँ रुकते हैं, क्योंकि पहले जगन्नाथ जी से अनुमति ली जाती है और फिर वहाँ के राजा से अनुमति ली जाती है कि अब हम जा रहे हैं ढूंढने के लिए जगन्नाथ जी के नए नवकलेवर का जो वृक्ष है वो कहाँ मिलेगा, तो फिर उनसे अनुमति ली जाती है। देखिए नियम है, वैसे तो कहा जाए कि केवल जगन्नाथपुरी में है, लेकिन ये वैदिक सभ्यता है, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान और वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। भक्ति में भी, भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बलवान चीज़ें हैं। भक्ति में जो बल हैं ये कोई शारीरिक बल नहीं है, भक्ति के बल आध्यात्मिक होते हैं, और वो कैसे प्राप्त होते हैं, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि तीन प्रकार के बल हैं और ये महाबल कहे गए हैं। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल। भक्ति के बल क्या हैं? भक्ति के बल कोई शरीर से नहीं प्रकट होते, भक्ति के बल कोई धन से प्रकट नहीं होते, मान प्रतिष्ठा से प्रकट नहीं होते। भक्ति के बल प्रकट होते हैं भक्त पद धूली अर्थात नम्रता से। भक्त पद धूली अर्थात जो भक्तों के चरणों की धूली है, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति अपने आप को भक्तों के चरणों में समर्पित कर देता है। धूली लेने का अर्थ सीधे धूली लेना नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन सार भक्तों के बताए हुए मार्ग पर चलना अर्थात नम्रता। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल। तो भक्तों के चरणों की धूली अर्थात भक्तों के पद चिन्हों पर चलना, भक्तों के जब पद को धोया हुआ जल, भक्त भुंक्त भक्त पद धूली आर भक्त पद जल, तो भक्तों के पद से जो जल निकला है उसमें हम विचरण करें या उसमें हम तैरें उस जल में, या उस जल को ग्रहण करें। और भक्त भक्त भुंक्त अवशेष, भक्तों ने जो खाया है उसका जो बचा हुआ है, सीधे भी हो सकता है, और जैसे हम भागवत इत्यादि का श्रवण करते हैं तो ये भागवत क्या है, ये भक्त भुंक्त अवशेष है। सुखदेव गोस्वामी ने आस्वादन किया और फिर उसको और मीठा करके फिर प्रकट किया, ये भक्त भुंक्त अवशेष है। तो इसीलिए बल हैं भक्ति के, भक्तों के बताए हुए मार्ग पर चलना, भक्तों के द्वारा दिए गए आचरण को करना, दिए गए मार्ग को समझना, भक्तों के द्वारा दिए गए ज्ञान को, उनके द्वारा दिए गए शास्त्र को समझने का प्रयास करना, ये बल हैं भक्ति के। तो इसीलिए अनुमति लेते हैं राजा से, क्योंकि राजा कौन है? राजा को नरदेव कहा जाता है या फिर नरेंद्र कहा जाता है, नरों में जो इंद्र के समान है, जो राजा है। मनु संहिता में कहा गया है कि जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे पहले भगवान से अनुमति लेते हैं और फिर उनके प्रतिनिधि से अनुमति लेते हैं। तो दो दिन तक राजा के घर में रहते हैं और फिर आगे चलते हैं ये दल, और वे आते हैं 50 मील दूर जगन्नाथपुरी से एक देवी का, शीतला देवी का मंदिर है। तो उस मंदिर में आते हैं और वहाँ पर कई दिनों तक रहते हैं। ऐसा वर्णन है कि बाकी सब बाहर रहते हैं लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो मंदिर में अंदर सोते हैं, और तब तक सोते हैं जब तक स्वप्न में शीतला देवी उन्हें बताती नहीं है कि कौन सी दिशा में जाने से वृक्ष प्राप्त होगा, तब तक वो वहीं पर विराजमान होते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? हम लोग कह सकते हैं कि ये तो जगन्नाथ जी की पूजा करनी है, फिर देवी देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? भगवद गीता में भगवान ने कहा है सीधे मेरी पूजा करो, सही है। तो यहाँ पर देवी देवताओं को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है। वे बताते हैं कि आप जाइए और भगवान का वृक्ष वहाँ मिलेगा आपको। तो ये सेवा है उनकी, अर्थात इस पूरे प्रसंग में हर कोई सेवा कर रहा है। राजा सेवा करता है, प्रजा सेवा कर रही है, देवता सेवा कर रहे हैं और वो बतला रहे हैं। तो ऐसे उस पुजारी को जो प्रमुख हैं उस दल के, उनको स्वप्न में देवी बताती हैं कि आप इस दिशा में जाएंगे तो आपको वृक्ष मिलेंगे। और ये सारे वृक्ष एक स्थान पर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक ही स्थान पर है। बड़ा कठिन होता है इनको ढूंढना, क्योंकि इसके बहुत से नियम हैं, विशेष करके जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी का जो वृक्ष होता है जिससे जगन्नाथ जी के विग्रह बनते हैं, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, इस वृक्ष के चार प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए, चतुर्भुज रूप। तो चार प्रमुख शाखाएं होनी चाहिए, अन्यथा अगर उसकी चार प्रमुख शाखाएं नहीं है तो उस वृक्ष को नहीं लिया जाता। दूसरा, इसके निकट कोई नदी या तालाब होना चाहिए, जलाशय होना चाहिए। तीसरा, इसके बहुत पास में सर्प रहने चाहिए, सर्पों का स्थान होना चाहिए। चौथा, इसके पास शमशान होनी चाहिए। देखिए, इसीलिए कह रहे बड़ा सरल नहीं है, और ये सब देखकर उस वृक्ष को लिया जाता है। तो और इसका जो रंग है वो थोड़ा सा काला होना चाहिए। जगन्नाथ जी काले हैं ना, गोरे तो नहीं है। जगन्नाथ जी और बलराम जी में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, जगन्नाथ जी गोरे हैं और बलराम जी काले हैं। ठीक है, आप लोग हंसे क्यों? गलत कह दिया हमने कुछ? सही कर देते हैं, जगन्नाथ जी काले हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अंतर को बताते हैं। वो कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। वो कहते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, शास्त्र कहता है कि श्री कृष्ण सर्व अवतारी, सारे अवतार उनसे आते हैं, इसीलिए उन्हें स्वयं भगवान कहा जाता है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, और उनका ही दूसरा ये देह है, दूसरा रूप है श्री बलराम जी। कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है, एक ही स्वरूप। बहुत सुंदर वर्णन है, जान लीजिए कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान हैं, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया। केवल रंग का अंतर है, बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। और तो ये रूप क्यों आता है, आद्य काया रूप लीला रस सहाय, कृष्ण लीला रस सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी अपना ये रूप लेते हैं। तो इसीलिए कृष्ण के, जगन्नाथ जी के इस वृक्ष को थोड़ा सा काला होना चाहिए। कितने हो गए आप में से, किसी को याद है अभी तक कितने लक्षण कहे आप लोगों की परीक्षा? 5 हो गए, ओके। पहला लक्षण, हाँ, 4 प्रमुख शाखाएं, और छोटी छोटी शाखाएं हो सकती है लेकिन प्रमुख 4 शाखाएं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, एक एक कोई बताइए, केवल आप बताइए। हाँ जी, पीछे हाथ उठाए, नहीं नहीं पीछे हाथ उठाए, नदी या जलाशय होना चाहिए, बहुत अच्छा। तीसरा, हाथ उठाइए, कोई बोलिए नहीं, तीसरा लक्षण, फिर से आप लोग बोल रहे हैं, केवल हाथ उठाइए, फिंगर ऑन योर लिप्स। हाँ जी प्रभु जी, एक मिनट, ये बता रहे। हाँ जी, सर्पों का स्थान होना चाहिए, बहुत अच्छा। और पीछे प्रभु जी ने बताया शमशान होनी चाहिए, और हाँ जी काला वृक्ष, काला होना चाहिए, वैसे नीम का वृक्ष सफेद भी होता है। और कोई लक्षण रह गए, सब बता दिए, ओके आगे बताते हैं, अभी कम नहीं हुआ, अभी और बाकी हैं। और ये जो वृक्ष है ये ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से 3 रास्ते जाते हैं। 3 रास्ते जाने चाहिए, ऐसे स्थान पर होना चाहिए ये वृक्ष। और महत्वपूर्ण लक्षण, उस वृक्ष में शंख और चक्र, इनके चिन्ह होने चाहिए, और किसी ने बनाए हुए नहीं, स्वाभाविक। अभी कुछ दिन पहले जब लोग जा रहे थे देखने, तो किसी ने हमें कुछ भेजा था जहाँ से वो दिखाया जा रहा था उस वृक्ष को, और उसमें स्वाभाविक तौर से वो शंख और चक्र के निशान थे। तो उसमें शंख और चक्र के निशान होने चाहिए। और एक चीज़, उस वृक्ष के ऊपर किसी भी पक्षी ने घोंसला नहीं बनाना चाहिए। और एक चीज़, उस वृक्ष के ऊपर कोई लता नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कभी लता ने उसको पकड़ा नहीं होना चाहिए। लता समझते हैं ना आप लोग, वो जो ऐसे ऊपर तक जाते हैं। कितने हो गए? हाँ हाँ, ओके। जगन्नाथ जी आप बताइए, 10 के 10, 10 किसको याद रहेंगे आप बताइए? इनको माइक दो और इनको खड़ा करो, इनका नाम जगन्नाथ है, अपना ही वृक्ष इनको याद नहीं होगा तो कैसे रहेगा? माइक दो इनको, और ये मोबाइल्स बंद कीजिए। कल हमने आपको बताया था ये एक अपराध है भगवान के सामने मोबाइल पर बात करना, तो यहाँ अपराध मत कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। 3 रास्ते होने चाहिए, चिड़िया का घोंसला नहीं, नहीं किसी भी पक्षी का, कबूतर का भी नहीं, कोई लता नहीं होनी चाहिए, शंख चक्र का चिन्ह होना चाहिए, बहुत अच्छा। और एक, देखिए जगन्नाथ जी अपना ही वृक्ष भूल गए तो कैसे होगा। खैर, तो ये लक्षण है, तो ये सारे लक्षणों वाले वृक्ष को ढूंढना पड़ता है। तो शीतला देवी केवल बताती हैं आप इस दिशा में जाइए आपको मिलेगा। तो ये सारा दल फिर कई दिनों तक वहां रुकने के बाद, जब स्वप्न में ये उनको आदेश मिलता है, तब वो वहां से आगे बढ़ते हैं। और फिर ढूंढते ढूंढते इन लक्षणों को, इन सारे लक्षणों को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक, कि केवल वृक्ष काला है चल जाएगा, नहीं, सारे लक्षण, और फिर उन सारे लक्षणों वाले उस वृक्ष को ढूंढा जाता है। और फिर जब वो वृक्ष मिल जाता है तो वहाँ पर फिर उसकी पूजा की जाती है और उसके बाद उसको गिराया जाता है। और जितना आवश्यक है भगवान का विग्रह बनाने के लिए, आप जानते हैं जगन्नाथ जी की कितनी हाइट है, कोई बता सकते हैं कद कितना है जगन्नाथ जी का? वो फिक्स है, ज़्यादा बड़े छोटे नहीं होते हैं, 5 फुट 7 इंच जगन्नाथ जी का हाइट है। बलराम जी थोड़े से छोटे, 5 फुट 5 इंच के, और सुभद्रा और थोड़ी छोटी है, 5 फुट की है। तो जगन्नाथ जी का 5 फुट 7 इंच का जो विग्रह बनाना है उसके लिए जितनी लकड़ी चाहिए उसको लिया जाता है। और ये विग्रह भी विशेष लोग बनाते हैं, जो लोग रथ बनाते हैं वही विग्रह बनाते हैं, उनको महाराणा कहते हैं, तो वे लोग ही बना सकते हैं और कोई नहीं बनाता। तो वे लोग साथ में जाते हैं इस दल के, करीब 19 महाराणा इसमें साथ में होते हैं जो देखने के लिए जाते हैं कितनी लकड़ी लगेगी, ये सही है या नहीं। तो फिर उसको रथ को बनाने के लिए जितनी चाहिए उतनी लेते हैं, बाकी लकड़ी को वहीं पर गाड़ दिया जाता है नीचे, उसका कोई और दूसरा इस्तेमाल नहीं होता, उसको गाड़ दिया जाता है और फिर वो स्थल पवित्र हो जाता है बस, फिर उसके बाद उस लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे उस लकड़ी को लाकर करीब 21 दिनों तक भगवान के विग्रह को बनाया जाता है, 21 दिन लगते हैं और बहुत कठिनाई से बनता है। अर्थात जो महाराणा जो बना रहे हैं अंदर, वे जब तक कार्य करते हैं ना उनको कुछ खाना है ना पीना है, कुछ नहीं खा सकते कुछ नहीं पी सकते, वे लोग केवल भगवान के विग्रह को बनाते रहते हैं। और वो मंदिर प्रांगण के बाहर नहीं जा सकते, उनको वहीं सोना होता है, मंदिर में ही सोते हैं और मंदिर में ही प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर जाकर दिन भर कार्य करते, दिन भर कुछ नहीं खाते न पीते, न पानी पीते हैं न कुछ ग्रहण करते हैं, क्योंकि उससे दूषण हो जाएगा। तो बिना दूषित हुए भगवान के विग्रह को 21 दिनों तक बनाते हैं वे लोग। और भगवान के जो हाथ हैं, कोई जानते कितने लंबे बनते हैं भगवान के हाथ? ये सब उड़ीसा के महाराणा प्रभु बैठे हैं यहाँ पर, महाराणा लोग बनाते हैं, उनको तो पता होना चाहिए, 12 फुट लंबे भगवान के हाथ होते हैं। इसीलिए जब जगन्नाथ जी को रथ यात्रा में बाहर लाते हैं तो उनके हाथों को पकड़ने के लिए कम से कम 10 लोग लगते हैं, पीछे करीब 20-25 लोग उठाते हैं, दूसरे हाथ में इतने, ऐसे लाया जाता है। तो जगन्नाथ जी का ऐसे विग्रह बनता है, तो करीब 21 दिन तक ये बनता है। जगन्नाथ बलदेव, बलदेव जी का भी वृक्ष अलग है, बलदेव जी के वृक्ष में 7 शाखाएं होनी चाहिए, जगन्नाथ जी में 4, बलदेव जी थोड़ा ज़्यादा सेवा करते हैं इसीलिए 7 शाखाएं होनी चाहिए, और उन पर हल का निशान होना चाहिए उस वृक्ष पर। बलराम जी का निशान क्या है? हल। और क्यों है कोई बता सकते हैं? बलराम जी हल क्यों लेकर चलते हैं? हाँ हाँ, युद्ध के लिए। हाँ युद्ध के लिए तो जब भी इस्तेमाल, युद्ध के लिए तो वो गदा भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं? ये 2 निशान होने चाहिए, हल का और गदा का, वृक्ष पर। बलराम जी हल इसी लेकर चलते हैं क्योंकि कृष्ण गोरक्षा के सूचक हैं, गोपाल, और बलराम जी कृषि, कृषि अर्थात खेती करना। तो खेती किससे की जाती है? हल से। हल तो चाहिए, आजकल तो यहाँ पर बंद हो गया है खेती, भारत में बहुत कम हो रही है, कारोबार में तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग भूल गए होंगे कि हल किसे कहते हैं, बैल क्या होते हैं। हल एक तरह का, वो आपको बताएं, ऐसे बना होता है, उसको खींचा जाता है। तो हल इनको, इसीलिए बलराम जी का नाम है हलधर, हलधर यानी जो हल धारण करते हैं, तो कृषि का सूचक है। अर्थात कृष्ण और बलराम गोरक्षा और कृषि के सूचक हैं। भगवान के जगत में, भगवान के धाम में ये महत्वपूर्ण कार्य है गोरक्षा। सभी लोग गायों की रक्षा करते हैं, गायों से प्रेम करते हैं, स्वयं कृष्ण बचपन की, अभी हम लोग इन रविवारों में आगे आने वाले कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेंगे, तो बचपन में कृष्ण कहाँ खेलते थे? गोबर और गोमूत्र में। छोटा सा बछड़ा होता था, छोटे से बालक कृष्ण जाकर उसकी पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़ा घबरा जाता था तो भागता था, और भागते भागते कृष्ण पूंछ पकड़े हुए छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बड़ी तेजी से भाग रहा है, और सारा गोबर और गोमूत्र में से कृष्ण को लेके जाता था और कृष्ण उसमें से खेल रहे हैं। हम लोगों को तो बदबू आती है, गोमूत्र गोबर से लोग छी छी करते हैं, वो केमिकल से बनाया हुआ सेंट उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गाय से आया हुआ पदार्थ बिल्कुल छी छी करते हैं। कृष्ण भक्तों को कम से कम नहीं करना चाहिए। तो गोरक्षा और कृषि, कृष्ण और बलराम, तो उस वृक्ष पर हल का निशान होना चाहिए। तो ऐसे वृक्षों को लाया जाता है, फिर कृष्ण बलराम सुभद्रा सुदर्शन इनके विग्रह बनते हैं, और फिर जब ये विग्रह तैयार हो जाते हैं केवल एक दिन पहले, रथ यात्रा के दो दिन पहले ये तैयार होते हैं। अब आगे रथ यात्रा है, उसके दो दिन पहले विग्रह तैयार होते हैं, फिर रात्रि के समय 12 बजे इनको स्थापित किया जाता है, या कहते हैं कि ब्रह्म एक विग्रह से दूसरे विग्रह में स्थानांतरित करते हैं। तो जो भक्त इसको स्थानांतरित करते हैं, तीन प्रमुख पुजारी होते हैं। जब भगवान का विग्रह बन रहा होता है उस समय में मंदिर के जो प्रमुख पुजारी हैं उनको भी अनुमति नहीं होती है वहां जाने की, जाके देख नहीं सकते कैसा बन रहा है। और फिर जब बन जाते हैं तब तीन पुजारी, केवल तीन जिनको चुना जाता है ब्रह्म को स्थानांतरित करने के लिए, उनको अनुमति दी जाती है। वो जाते हैं और उनके आंखों पर जगन्नाथ जी का कपड़ा बांध दिया जाता है, वो देख नहीं सकते, तीनों के आंखों पर बांधा जाता है। और फिर वो एक पुराने जो विग्रह हैं या पहले के जो विग्रह हैं उनसे ब्रह्म को निकाल कर फिर वो नए विग्रह में स्थानांतरित करते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसा लगता है आप ब्रह्म को, और वो हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हाथ पर भी जगन्नाथ जी का कपड़ा बांधा जाता है, आंखों पर कपड़ा बांधा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब ब्रह्म को लेकर जाते हैं वो दूसरे में स्थानांतरित करते हैं, उनसे पूछा कैसा अनुभव होता है, तो वो बता नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी है, हाथ में जगन्नाथ जी का वस्त्र है, लेकिन कहते हैं ऐसा लगता है मानो हाथ में खरगोश खेल रहा हो। तो ब्रह्म को वो एक विग्रह से दूसरे विग्रह में स्थानांतरित करते हैं, और उसी रात को जो पहले के विग्रह हैं उनको समाधि दे दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर में अगर आप जाएंगे तो पीछे की ओर समाधि स्थल है जहाँ जितने भी पहले के विग्रह उनको समाधि दी गई है, और उसी जगह दी जाती है, जैसे जगन्नाथ जी को जिस स्थान में दी जाती है उसी स्थान में हर बार दी जाती है, ऐसा नहीं कि स्थान बदलता है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वहीं दिया जाता है, और रात को ही दे दिया जाता है, फिर उनको कोई दर्शन नहीं कर पाता। और उसके बाद फिर अगले दिन जगन्नाथ जी के पहले दर्शन होते हैं, और इतने सारे समय में ना भोग लगता है ना आरती होती है, और फिर पहले दर्शन होते हैं जिसको नयनोत्सव कहते हैं या नेत्रोत्सव कहते हैं। तो नेत्रोत्सव का ये उत्सव है जब पहली बार इतने समय के बाद अब जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहा करते थे तो जब ऐसा समय आता कि जगन्नाथ दर्शन नहीं देते हैं करीब 15 दिन, वैसे 15 दिन लेकिन इस समय जब नवकलेबर होता है तो करीब 45 दिन दर्शन नहीं होते, तो जब नहीं देते थे तो चैतन्य महाप्रभु रह नहीं पाते थे, इसलिए पास में एक स्थान है अलवारनाथ, आज उसको अलारनाथ कहते हैं, वैसे वो अलवारनाथ है, वो कृष्ण का विग्रह है लेकिन चतुर्भुज रूप कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाते थे और फिर नेत्रोत्सव के लिए वापस आ जाया करते थे। तो नेत्रोत्सव के समय जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं और फिर अगले दिन रथ यात्रा का उत्सव होता है, और रथ यात्रा का उत्सव भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी बड़े झूमते हुए, आप लोगों ने देखा होगा, जगन्नाथ जी सीधे नहीं आते हैं, झूमते हुए आते हैं, ऐसे ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई शराबी आ रहा, शराब पीकर झूमता हुआ। हाँ, जगन्नाथ जी जो भी करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। चोरी करते हैं चौराग्रगण्यम, चोरी करने वालों में अग्रणी है। क्यों भगवान को चोरों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, कोई बताएंगे? भगवान क्या चुराते हैं? माखन तो कोई भी चुरा सकता है, उसमें श्रेष्ठता क्या है? हाँ, माखन चुराते हैं भगवान, ये सही है, लेकिन उस श्रेष्ठ क्यों माना गया? चौराग्र गण्यम एक अष्टकम लिखा गया है, चौराग्र गण्यम अष्टकम, उसमें कहा है कि आप सबसे बड़े चोर हैं और उनको नमन कर रहे हैं। चौराग्र गण्यम तमहम नमामि, तो क्यों कहा गया है? हाँ, चित्त को चुरा लेते हैं, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, ऋषियों के मन को या चित्त को चुरा लेते हैं, बहुत अच्छा। और हाँ जी, हमारे पापों को चुरा लेते हैं, बहुत अच्छा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये जो कृष्ण हैं, अनेक अनेक जन्मों से हमने जो पाप इकट्ठे करके रखे हैं, बड़े संभाल कर ताले में बंद कर तिजोरी में रखे हुए हैं अपने पापों को, अनेक अनेक जन्मों के अर्जित पापों को कृष्ण चुरा लेते हैं, इसीलिए सबसे बड़े चोर हैं। कोई भी चोर हो वो ज्यादा से ज्यादा हमारी संपत्ति चुरा सकता है, हमारे शरीर को चुरा सकता है मारने के बाद, लेकिन अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तमहम नमामि। तो इसीलिए जो भी करते श्रेष्ठ, तो अब झूमते हुए आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनसे बड़ा शराबी और कोई हो ही नहीं सकता। बहुत झूमते हुए आगे पीछे, और करीब 500 लोग उनको पकड़े हुए हैं, उनको लेकर आ रहे हैं, नीचे गद्दे डाले जाते हैं, वो गद्दे फट जाते हैं, रुई ऐसे ऊपर उड़ती है, और ऐसे जगन्नाथ जी आते हैं रथ यात्रा में और रथ पर बैठते हैं। ऐसा वर्णन है कि अगर रथ तक जगन्नाथ जी जब तक नहीं बैठते हैं तब तक सारे मंत्री संतरी सब खड़े रहते हैं। हम एक बार रथ यात्रा में थे तो हमने देखा इस तरफ स्टेज बना था, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री और पता नहीं बहुत सारे मंत्री थे, और जब तक जगन्नाथ जी चढ़े नहीं वो लोग खड़े रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है उड़ीसा में जगन्नाथ जी का इतना मान सम्मान है कि अगर जगन्नाथ जी के बैठने के पहले मुख्यमंत्री बैठ जाए तो अगले दिन उसकी सीट चली जाती है कुर्सी चली जाएगी, लोग रहने नहीं देंगे उसको। जगन्नाथ जी खड़े हैं और तुम बैठ गए, हटा देते हैं। वैसे जगन्नाथ जी खड़े हैं या बैठे हैं इस समय? क्या आप लोगों को क्या लगता है, खड़े हैं या बैठे हैं? हम सब बैठे हैं, जगन्नाथ जी खड़े हैं या बैठे हैं? बैठे हैं, पक्का? कितने लोग कहते हैं जगन्नाथ जी बैठे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। अभी सब घबरा रहे हैं, हम जब भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आधे लोग तो हाथ ही नहीं उठाते हैं, ताकि वो कहें कि हाँ देखिए मैं सही था, जो भी सही होगा उसकी तरफ हम जाएंगे, क्योंकि गलती से हाथ उठा दिया तो फिर ठीक नहीं। हमने एक बार एक प्रोग्राम में, हमने आपको बताया था, एक प्रोग्राम में, छोटा सा प्रोग्राम था किसी के घर में, और वहाँ छोटे बच्चे भी बैठे थे, छोटी सी बच्ची थी 3 या 4 साल की हो, तो हमने उससे उसको कहा आप इधर आओ, हमने कहा जाओ उनके घर पे जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, तो हमने कहा जाओ जगन्नाथ जी से पूछो कि वो खड़े हैं या बैठे हैं, और जो भी वो बोले आकर सच सच बताना, आप विश्वास नहीं करेंगे। बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से वो लड़की गई, उसने कोई ऐसे ये नहीं किया कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, जैसे ही कहा उठी चली गई, सामने खड़ी हो गई जगन्नाथ जी के। और उसके बाद जब आई तो हमने उसको माइक दिया, हमने कहा बताओ जगन्नाथ जी से पूछा, क्या पूछा? उसने कहा हमने ये पूछा आप खड़े हैं कि बैठे हैं। हमने कहा जगन्नाथ जी ने क्या उत्तर दिया आपको? और उसका उत्तर सही था, उसने कहा जगन्नाथ जी खड़े हैं, जगन्नाथ जी खड़े हैं। तो और इतने इतने विश्वास से उसने दिया था, हम सच बता रहे हैं, उस दिन हमें लगा कि काश ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमें आ जाए, तो कितनी श्रद्धा थी उसको। उसने ये नहीं सोचा कि ये क्या लकड़ी है, इनसे जाकर क्या पूछना, या इतने लोगों के सामने अपमान होगा, कुछ नहीं। चुपचाप उठी जाकर जगन्नाथ जी के सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। 5 मिनट बाद खुद आ गई, किसी ने बुलाया नहीं। और उसने कहा, और बड़े विश्वास से उसने कहा, जगन्नाथ जी खड़े हैं। तब से हमें विश्वास हो गया कि जगन्नाथ जी खड़े हैं। तो जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं, फिर रथ चलता है, लोग खींचते, बहुत कभी कभी कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो 12-1 बजे तक। कल का तो हमें नहीं पता, किसी ने सूचना नहीं दी, लेकिन कभी कभी तो 12-1-2 बजे तक रथ पे ही नहीं बैठते। सुबह से निकल जाते हैं, 9 बजे निकलते हैं अपने मंदिर से, और मंदिर से रथ कितनी दूर होता है, 100 मीटर भी नहीं। बस दरवाजे से बाहर आए रथ खड़े होते हैं, लेकिन वो आने के लिए उनको कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी रथ पर बैठते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित, विशेषतः चैतन्य महाप्रभु से। एक समय ऐसा हुआ कि रथ रुक गया बीच में ही, सब खींच रहे हैं, हजारों लोग, रथ नहीं चल रहा। जो गजपति थे राजा, उन्होंने तुरंत हाथियों को बुलाया, हाथियों की व्यवस्था की गई, और हाथी धक्का मार रहे हैं, खींच रहे हैं, हाथियों के पीछे वो रस्सी लगाई गई और हाथी जोर से खींच रहे हैं, रथ नहीं हिला। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया, रथ नहीं हिला। और चैतन्य महाप्रभु उस समय आराम करने चले गए, क्योंकि रथ रुक गया है, बहुत कीर्तन हो गया था। 7 दल होते थे चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, और हरेक दल में कई मृदंग, कई करताल गाने वाले ऐसे, और चैतन्य महाप्रभु हर दल में नृत्य किया करते थे। कितना सुंदर दृश्य होता होगा वो, केवल नृत्य और भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु आराम कर रहे थे और रथ चल ही नहीं रहा है, सबने बड़ा प्रयास कर लिया। उसके बाद जाके सबने महाप्रभु से प्रार्थना की, आप ही कुछ कीजिए, जगन्नाथ जी तो चल नहीं रहे हैं, क्या बात है। तो चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए और उन्होंने अपना मस्तक केवल रथ को स्पर्श किया और रथ भागने लगा। दरअसल नीचे भी भगवान, ऊपर भी भगवान, वही कृष्ण जगत रथ पे थे, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन फिर भी आदान प्रदान चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भाव अलग है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के भाव में आए हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आए हैं, और जगन्नाथ ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा खींचे जाते हैं। अगर हम रथ यात्रा के महत्व को समझने का प्रयास करें तो ऐसे रथ यात्रा होती है, भगवान का रथ चलता है, उसको खींचा जाता है, कई भक्त आते हैं, उसको खींचते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस रथ यात्रा का एक आध्यात्मिक महत्व भी है, और बहुत सुंदर तुलना वो करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ये रथ है, ऐसे ही ये शरीर एक रथ है, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस रथ में मैं विराजमान हूं। भगवान ने इसकी तुलना एक यंत्र से कही की है, और कहा कि इस रथ में भगवान विराजमान होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सभी के हृदय में मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो ये जो रथ है, इस पर भगवान विराजमान है, और भगवान को भूलने की और याद करने की शक्ति दोनों भगवान देते हैं। अब प्रभुपाद बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि भगवान भूलने की शक्ति क्यों देते हैं, याद करने की शक्ति तो देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन भूलने की शक्ति क्यों देते हैं भगवान। अभी देखिए कितने सारे लोग भगवान को भूल गए हैं, किसने ये शक्ति दी, भगवान ने, भगवान ही देते। वो खुद कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, स्मृति यानी याद करना, कि ऐसा ऐसी शक्ति जिससे आप मुझे याद कर सको मैं देता हूं। मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, अपोहनम यानी भूल जाना, विस्मृति वो भी मैं ही देता हूं। तो प्रभुपाद प्रश्न करते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों भुला देते हैं हमें। क्योंकि जीव इच्छा करता है, हम इच्छा करते हैं, तो ये जो शरीर है ये एक रथ के समान है जिसमें हमने भगवान को बिठाया है, लेकिन हम इच्छा कर रहे हैं भगवान के आनंद की नहीं अपने आनंद की, और इसीलिए भगवान भुला देते हैं कि ठीक है तुम आनंद लेना चाहते हो आनंद ले। भगवान से जब जो मांगे भगवान उसको देते हैं, इसीलिए इच्छा क्या करनी है इसको बहुत संभाल कर, खास करके भगवान का नाम लेते समय। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो विशेषतः हमारे मन में हम क्या मांग रहे हैं भगवान से बहुत सावधान रहना चाहिए। एक चीज भगवान से आप मांग सकते हैं। वैसे हम लोग भगवान से क्या क्या मांगते हैं, आप कभी भगवान से क्या मांगते हैं? कुछ नहीं, एग्जाम में पास करा देना। ओके, बहुत अच्छा, ऑनेस्ट, ईमानदारी से। और कोई बताएं क्या मांगते हैं भगवान से? सुख शांति समृद्धि। ओके, और हाँ माता जी भक्ति, धन्यवाद। और कोई? हाँ श्रद्धा, वेरी गुड। और हम श्रद्धा मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, एग्जाम में पास होना मांगते हैं, सुख शांति और धन इत्यादि मांगते हैं। धन कोई नहीं मांगता, बड़ी आश्चर्य की बात है, कोई बोल नहीं रहे सब कहेंगे धन धन, लेकिन कोई नहीं कह रहा भक्ति श्रद्धा, ये तो महान भक्तों के लक्षण हो रहे हैं। धन कोई नहीं मांगता, बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो धन नहीं मांगते भगवान से? धन नहीं मांगते, अच्छा। तो हम लोग ये सब मांगते हैं भगवान से, हमें केवल एक चीज मांगनी चाहिए भगवान से, एक प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे भगवान, मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं या आपसे प्रार्थना कर रहा हूं उसको आप सुनना नहीं, बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? क्योंकि भगवान ने सुन लिया तो क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा मिल जाएगी। भगवान चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जीव जब मेरे पास आता है कुछ मांगने के लिए तो वो विष मांगता है मुझसे, अमृत को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, अपने मूल कार्य को छोड़कर, मुझे छोड़कर कोई भौतिक सुख की कामना करता है। धनम देही रूपम देही, यही सब तो मांगते हैं ना हम लोग। हाँ आप कह नहीं रहे हैं लेकिन भगवान जानते हैं, यही मांगते हैं, मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं दूर कर दो भगवान, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, बस एक करवा दो, 5 तोला लड़की को और आधा तोला आपको देंगे, या 10 तोला जो भी, हमें नहीं पता कितना तोला देते हैं, जो भी है। तो यही सब है, राइट? शिव जी के पास जाते हैं, हम कई बार कह चुके हैं, शिव जी ने तो मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है। युवक जाते हैं सोमवार को नारियल लेकर या दूध लेकर या बेल के पत्ते लेकर, और युवतियां भी जाती हैं, युवक बोलते हैं एक सुंदर पत्नी चाहिए, युवतियां बोलती हैं बेचारे शिव जी जब करें या ये सब देखें कि किसको किसके साथ विवाह कराना है। तो हम लोग इच्छाएं करते हैं भगवान से, बहुत सारी इच्छाएं, लेकिन ये इच्छा करनी चाहिए कि हमारी मत सुनिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये विष मांग रहे हैं। क्यों विष है? बहुत सुंदर भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया शुनिया विष खाइनो। आप सोचिए कि कोई आपको हाथ में विष दे दे कि मेरे प्रिय मित्र ये विष है, प्लीज खा लो इसको। जानिया शुनिया, हम जानते हैं विष है, सुना है, क्या सुना है कि इसको खाने से मृत्यु होगी, कोई खाएगा? जानिया शुनिया विष खाइनो, लेकिन वही हम करते हैं। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर यही कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जिसके हाथ में विष दिया जाए कि ये विष है इसको खा लो, और वो बड़े प्रेम से जानिया शुनिया, अनजाने में तो कोई भी खा सकता है, आपको किसी चीज में मिला कर दे दिया जाए आपको नहीं पता, लेकिन जानी अशुनिय जानते हुए खाते हैं। और यही आश्चर्य है मनुष्य जीवन का। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करना राधा कृष्ण ना भजिया, भगवान की भक्ति करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जानते हैं शास्त्रों से सुना है, फिर भी विष खाइयो हम करते नहीं। और क्यों विष के समान है? क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको बारंबार जन्म लेना पड़ता है, उसकी मृत्यु होती है फिर जन्म। तो क्या जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती? क्या वो नहीं मरते? वो नहीं मरते, ये सत्य है, क्योंकि उनकी मृत्यु एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं होती। वो तो देह त्यागते हैं और भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, फिर मृत्यु कहाँ है? लेकिन मृत्यु किसे कहा जाता है? एक दृष्टि से न शरीर मरता है न आत्मा। शरीर तो अभी भी मृत है, उसमें तो प्राण है ही नहीं, तो फिर मरेगा क्या? और आत्मा ये अमर है, तो फिर मरता कौन है? मरता कौन है? हम कहते मर गया मर गया मर गया, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु होती है? शरीर तो वैसे ही मृत है, आज भी मृत है। आप जिस शरीर को लेकर चल रहे हैं ये मृत शरीर है, इसमें प्राण नहीं है, ये केवल जीवित दिखता है क्योंकि आत्मा है। इसका प्रमाण जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर गई, वही शरीर वही आंखें वही चेहरा वही हाथ, मृत, कोई हलचल नहीं। सारे अंग रहते हैं, सारे अंदर के भी जितने आप कह लीजिए किडनी पैनक्रियस हार्ट और जो भी है सब है अंदर, फिर क्या हुआ? आत्मा नहीं है। और इसीलिए मृत्यु शरीर की नहीं है, शरीर आज भी मृत है। मृत्यु किसकी हो सकती है? जिसमें जीवन है। शरीर जीवित नहीं है, ये मृत पदार्थों से बना हुआ है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इसमें प्राण नहीं है। आत्मा की उपस्थिति इसे जीवित बनाती है। तो इसीलिए शरीर मृत है आत्मा अमर है, मरता कौन है? कौन मरता है? कोई नहीं। प्रभुपाद समझाते हैं मृत्यु क्या है। कहते हैं आत्मा का एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण प्रकृति के नियमों के अधीन, यही मृत्यु और जन्म है, बस। तो आत्मा पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को स्वीकार करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, तो आत्मा नहीं मरती, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का ये महत्व है कि इस शरीर को रथ के समान माने, इसमें भगवान को विराजमान करें, और फिर जहां भगवान विराजमान हैं वहां भक्ति से, जैसे भक्त इस रथ को खींच के ले जाते हैं, तो अपने इस रथ को भक्तों के हवाले कर दें। वो रथ जिसमें भगवान को बिठाया है, अब इस रथ को भक्तों के हवाले कर दें, वो उसको खींच कर भगवान की ओर ले जाएंगे, भगवान के धाम ले जाएंगे। और प्रभुपाद समझाते हैं कि ये आध्यात्मिक महत्व है रथ यात्रा महोत्सव का। तो ऐसे रथ यात्रा महोत्सव होता है, भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ करीब 9 दिनों तक 8 दिनों तक वहाँ रहते हैं, वहाँ सेवा होती है उनकी, और फिर से एक रथ यात्रा होती है 9वें दिन जो अब 26 तारीख को होगी, उसमें भी लाखों लोग आते हैं। यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं, कई भक्त जा रहे हैं यहाँ से बेलगाम से इत्यादि, हम लोग मिलकर जा रहे हैं जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए। 26 तारीख को अर्थात अगले रविवार को हम लोग इस समय जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे होंगे जगन्नाथपुरी में। तो आप सब इस महत्व को समझिए जो प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि रथ यात्रा ये केवल एक कोई क्रिया नहीं है, एक रिचुअल नहीं है, बस गए और रथ को खींचा। रथ यात्रा हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन करने का एक मार्ग है, किस पथ पर हम चलें, और ये पथ है कि भगवान को अपने हृदय में विराजमान करें, अपने जीवन की डोर भक्तों के हाथ में सौंप दें, और यही सबसे अच्छी सुरक्षा और सफलता का लक्षण है। भगवान के नाम को लेना, भगवान की भक्ति करना, और भगवान से क्या मांगना, आप लोग क्या मांगेंगे भगवान से? बिल्कुल नहीं सुनना मैं जो मांग रहा हूं, क्योंकि भगवान ने सुन लिया तो वह ऐसी चीजें देंगे जो हमारे लिए सही नहीं है। आपको एक बार एक उदाहरण देते हैं। एक दिन मंदिर में, जिस मंदिर में हम रह रहे थे, वहां पर कोई उत्सव था शाम को, जिसमें हम भाग नहीं लेना चाहते थे, और हम जप कर रहे थे, और जप करते हुए हम सोच रहे थे कि जब वो जाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे कि हमारा बहुत सर दर्द है, हम नहीं जाएंगे। ये बहुत पहले की बात, शुरुआत में हमने केवल मंदिर ज्वाइन ही किया था, बंबई की बात है, 18 साल पहले की। तो हमने कहा हम कह देंगे कि हमारा सर दर्द है, तो जब करते समय हम ये सोच रहे थे, और जब शाम को, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ, शाम को जब जाने का समय आया और उस उत्सव में या जो भी चीज़ थी वहाँ जाना था, तो अचानक हमारा सर दर्द हो गया, इतना तेज सर दर्द, हम भूल गए कि हमने सुबह मांगा था, और हम सोच रहे क्यों सर दर्द हो रहा है, क्या हुआ है, और सही में जा नहीं पाए, सर दर्द हो गया, लेटे रहे 2 घंटा, बहुत तीव्र सर दर्द हुआ, और उसके बाद ठीक हो गया, और हमें कुछ पता नहीं चला। हम सोच रहे क्यों हो गया, शायद खाया नहीं ठीक से, ये वो। अगले दिन जब सुबह जप में बैठे, तब ध्यान आया कि कल जप करते समय हम सोच रहे थे कि मेरा सर दर्द हो जाए उस समय तो मैं कह दूंगा कि सर दर्द है, तो सर दर्द हो गया। तो उसके बाद से हमने कान पकड़ लिए कि कभी भगवान से ऐसी गलत चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान दिखा देते हैं कि देखो आप सोच रहे थे सर दर्द हो, ये लो सर दर्द। तो इसीलिए जब करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान से क्या मांगना है। हमारी जो इच्छाएं हैं बड़ी दूषित हैं, हम भगवान से जो भी मांगेंगे उनमें दूषण होगा, आसक्ति का दूषण, भोग प्रवृत्ति का दूषण, इस जगत में बने रहने का दूषण। इसीलिए भगवान से मांगिए नहीं, भगवान जानते हैं आपके लिए क्या सही है, वो आपको प्रदान करेंगे। तो भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हमेशा उनकी सेवा में रहें, और जैसे वो चाहें वैसे हमें रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप में से किसी के कोई प्रश्न या टीका टिप्पणी, कोई कुछ करना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। माइक कहाँ? अगर आपके कोई प्रश्न है हाथ उठाइए, तो जगन्नाथ जी आप तक माइक लेकर आएंगे। कोई प्रश्न किसी के? आश्चर्य की बात है, कोई प्रश्न, हमने थोड़ा जल्दी आज प्रवचन बंद किए, ये सोच के कि बहुत सारे प्रश्न होंगे तो प्रश्नोत्तर करें, लेकिन यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। आप सब संतुष्ट हैं, आप सब भक्ति का सारा विषय जान चुके हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा। एक मिनट, एक व्यक्ति एक समय तक। सुभद्रा, हाँ अच्छा, सुभद्रा का विग्रह कैसे बनता है, अर्थात आप पूछ रहे हैं उनका वृक्ष कैसे पहचाना जाता है। हाँ, सुभद्रा के वृक्ष में भी 7 शाखाएं होनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट मतलब बहुत काला नहीं, वो वृक्ष लाइट होना चाहिए, और उस पर भी गदा के निशान होने चाहिए, क्योंकि वो बलराम जी के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए गदा के निशान उस पर होने चाहिए। तो वैसे सुभद्रा जी का भी वृक्ष को ढूंढा जाता है, और सुदर्शन का वृक्ष भी ढूंढा जाता है, जिस पर केवल चक्र होना चाहिए, उन पर निशान। हाँ जी, हाँ हाँ सात दिन मौसी के घर में रहते हैं। मौसी कौन है? जगन्नाथ की। गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। गुंडीचा राजा की पत्नी थी, रानी थी, और वो बहुत महान भक्त थी, और इसीलिए उनके स्मरण में भगवान उनको कृपा देने के लिए उनके महल में जाते हैं। गुंडीचा महल है जो मंदिर कहलाता है, तो इसलिए गुंडीचा में जाते हैं। और हो सकता है क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा वात्सल्य भाव में की अपना पुत्र मानते हुए, इसीलिए मौसी कहा जाता, हो सकता है कहा गया हो, वैसे शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है। और कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? इधर दीजिए माइक माता जी। हरे कृष्ण। सुभद्रा के जन्म की कथा। किनकी पुत्री हैं सुभद्रा देवी, ये पता है? किनकी? वसुदेव की। और माता? अरे आप लोग पूजा कर रहे हैं जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा की। माता नहीं पता, जगन्नाथ जी की पता है ना? हाँ वो पता है, जगन्नाथ बलदेव की पता। सो माता जी का प्रश्न है कि जगन्नाथ सुभद्रा देवी के माता पिता कौन हैं, कैसे जन्म हुआ, कोई कथा नहीं पता है, क्या बताइए। तो जगन्नाथ जी के माता पिता हैं वसुदेव और, वो तो कृष्ण के हैं, जगन्नाथ जी के कौन हैं? कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी हैं। जगन्नाथ जी के कौन हैं? हाँ वही है, सरल है, वही कृष्ण है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे रोहिणी, ये जगन्नाथ और कृष्ण में क्या अंतर है? तो वही है। तो वसुदेव और देवकी जगन्नाथ जी के माता पिता हैं। वसुदेव और रोहिणी बलराम जी के माता पिता हैं। ठीक है, इतना तो आप सबको पता है। ओके, और अभी सुभद्रा के माता पिता कौन हैं? वसुदेव और रोहिणी। दरअसल बलदेव जी की बहन हैं सुभद्रा देवी, रोहिणी की पुत्री हैं। इनका जन्म बाद में हुआ था, जब कंस का वध इत्यादि कर दिया भगवान ने, उसके बाद जब रह रहे थे, तो वसुदेव और रोहिणी, रोहिणी के गर्भ से सुभद्रा देवी ने जन्म लिया। तो इसलिए छोटी बहन है, और इसलिए कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं अपनी छोटी बहन से। तो इनके माता पिता का नाम वसुदेव और रोहिणी है। सुभद्रा देवी ये योग माया है। प्रभुपाद समझाते हैं कि इस जगत में भद्रा और आध्यात्मिक जगत में सुभद्रा। तो सुभद्रा देवी योग माया, योग माया अर्थात दो मायाओं ने जन्म लिया था। एक माया थी, आप जानते हैं, आठवीं पुत्री, देवकी का आठवां पुत्र हुआ था, उसको पुत्री से बदल दिया गया, और जब कंस ने उसके पांव पकड़े और वो फेंकने वाला था मारने के लिए, क्या हुआ? उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, वो थी महामाया। तो उसने अष्टभुजा रूप धारण किया और कंस से कहा, मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और वैसे कंस की जो आराध्य देवी थी वो दुर्गा देवी थी, कंस दुर्गा की पूजा, और उसने अपनी आराध्य देवी को देखा, दुर्गा को सामने, तो इसीलिए घबरा गया, तुरंत छोड़ दिया, वसुदेव को छोड़ दिया, देवकी को छोड़ दिया। अरे अरे बहुत गलती हो गई, और व्यक्ति कर लेता है कभी कभी जीवन में, पाप हो जाता है इत्यादि इत्यादि। तो वसुदेव और रोहिणी की पुत्री, वसुदेव और रोहिणी की पुत्री हुई सुभद्रा। तो महामाया भी प्रकट हुई और योग माया प्रकट हुई सुभद्रा के रूप में। और जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जब बैठते हैं, तो उसमें सुभद्रा ये भक्ति प्रदायिनी के रूप में बैठती हैं, अर्थात भक्ति को प्रदान करने वाली देवी हैं ये सुभद्रा देवी। तो इसीलिए जब हम लोग इनके सामने खड़े हों, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति प्रदान करें। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी माइक लाइए इधर। हाँ प्रश्न ये है कि भगवद गीता में कहीं कहा गया है कि जीव को स्वतंत्रता दी गई है और कहीं कहीं पर यह है कि भगवान के नियंत्रण में है, तो कैसे समझना चाहिए? प्रश्न मूलतः ये जीव स्वतंत्र है या भगवान के अधीन है, राइट? यही प्रश्न है ना। सब कुछ भगवान के अधीन है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सब कुछ मुझसे आता है, अहम सर्वस्य प्रभव। और इसी तरह जीव भी भगवान से आते हैं, और क्योंकि हम भगवान से आते हैं इसीलिए भगवान पर पूर्ण आश्रित हैं। लेकिन भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं, और जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जाता। आपके सर पर कोई बंदूक रखे और बोले कहो मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, नहीं तो गोली मार दूंगा, आप बोलोगे मैं आपसे, आपके पिताजी से, आपके दादाजी से, आपके सारे परिवार से प्रेम करता हूं, गोली मत मारो। लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं है, सही है? लेकिन वही आपको स्वतंत्रता दी जाए कि ठीक है आपकी इच्छा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप मेरे पास आइए, नहीं करते कोई बात नहीं। और तब जब आप जाते हो तो वो सच्चा प्रेम। इसीलिए भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता जीव को दी है, लेकिन ये स्वतंत्रता बहुत थोड़ी है। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद। समुद्र में भी नमक है और समुद्र की बूंद में भी नमक है, लेकिन अंतर क्या है समुद्र की बूंद और समुद्र में? दोनों में नमक है, अंतर क्या है? बहुत विशाल। समुद्र बहुत विशाल है, बूंद इतनी सी। इसी तरह हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता भगवान के सामने बूंद के समान है, और भगवान समुद्र के समान स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए जीव को स्वतंत्रता दी है भगवान ने, बहुत थोड़ी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, थोड़ी स्वतंत्रता दी है। उसकी स्वतंत्रता इतनी है कि वो भगवान को प्रेम करने के लिए हाँ करे या ना करे, यही स्वतंत्रता है जीव। बाकी कोई स्वतंत्र नहीं, बाकी कर्मों से बंधा हुआ है इस जगत में। तो स्वतंत्रता केवल इतनी है कि वो भगवान की ओर मुड़े या ना मुड़े, और इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग। जब हम स्वतंत्रता का, वो स्वतंत्रता जो भगवान ने हमें प्रदान की, देखिए दरअसल वो भी स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि भगवान ने दी है हमें, तो वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो हम कष्टों में जाते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं तो हम स्वतंत्र होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो यही दोनों चीजें, ठीक है? और कोई प्रश्न है किसी के? पीछे माइक दीजिए।
हरे
कृष्ण।
आपने बताया था कि जगन्नाथ जी का जो 5 फुट 7 इंच, बट उनके हाथ जो 12 फुट, ऐसा
ताकि जो पंडे हैं उस पर लटक सके। हाँ, वैसे जगन्नाथ जी के हाथ 12 फीट के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का ये जो 5 फीट 7 इंच हाइट हमने बताई, ये जो विग्रह की है, जगन्नाथ जी की नहीं, जगन्नाथ जी बहुत लंबे, लेकिन भाव विभोर जब हो गए, ये जो रूप है जगन्नाथ जी का, ये इनके भाव का रूप है, भाव विभोर रूप है। जब व्यक्ति भावा विभोर हो जाता है तो ऐसे बताते हैं कि जगन्नाथ जी जब भावा विभोर हुए तो उनके हाथ, उनके पांव सब अंदर सिकुड़ने लगे, तो ये सिकुड़ गए तो सिकुड़ कर इतना से रह गए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कृष्ण तो 5 फुट 7 इंच के नहीं थे, वो तो बहुत ऊंचे थे, उस समय में लोग ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे। तो इसीलिए ये केवल उनका भक्त वात्सल्य रूप है, इसीलिए केवल इतनी है, अन्यथा जगन्नाथ जी काफी ऊंचे। हाँ, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।
तो ये प्रश्न था, कोई व्यक्ति थोड़ा कम पढ़ाई करके कुछ करके सफल हो जाता है बहुत जल्दी, और कोई काफी मेहनत करता है फिर भी सफल नहीं होता है। उसके बारे में एक प्रश्न पहले हुआ था, राजा मोहन ने बताया था कि पूर्व जन्मों का फल है, और उसके बारे में जानकारी चाहिए।
आप कल मंत्री बने थे या सेनापति? कल आप में से कितने लोगों ने ड्रामा देखा था? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत लोग नहीं आए थे कल। बहुत अच्छा नाटिका हुई थी। हाँ, सो सेनापति जी पूछ रहे हैं, महाराज के सेनापति। तो प्रश्न ऐसा है कि कई लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, फिर भी पास नहीं हो पाते, और कई लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते और एकदम, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते तो पास हो जाते, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं लेते, पास हो जाते। तो इसको कैसे समझना चाहिए? ये सही है कि ये कर्मों से जुड़ा है। हम सब जब जन्म लेते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके पहले उसकी आयु, उसका वित्त, उसका बल, उसका धन और उसकी विद्या, ये पहले से निश्चित हो जाती है। जब माँ के गर्भ में होता है उसके जन्म के पहले ये चीज़ें जन्म ले लेती हैं। आयु बलंत तमच विद्या विद्या विदन सॉरी निधनमेव च पंचतानी ही सृज्यन्ति, चाणक्य पंडित कहते हैं। तो पांच चीज़ें जन्म लेती हैं, इसका अर्थ क्या है कि इसको कितनी विद्या मिलेगी ये निश्चित है पहले से। और इसीलिए जब वो बहुत मेहनत करता है, अगर उसके भाग्य में नहीं लिखी तो उसे नहीं मिलती है, लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करता तो भी भाग्य में है तो भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हम कोई एग्ज़ाम नहीं दे, कोई पढ़ाई नहीं करें, मेरे भाग्य में लिखी है उड़ती हुई आ जाएगी, यूनिवर्सिटी आके डिग्री देगी, हमें ऊपर से सूचना आई है देवताओं से आपके भाग्य में है। नहीं, भाग्य में होने का अर्थ क्या है? मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है कि आपको 80% मार्क्स मिलेंगे, तो 80% तब मिलेंगे जब आप मेहनत करोगे। हाँ, मेहनत कितनी भी कर लो 80% के ऊपर नहीं जाओगे, ये भाग्य कहलाता है। तो लोग कभी कभी इसको गलत समझते हैं कि भाग्य में लिखा है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, पढ़ना है, कर्म करना है। भाग्य का फल तब मिलता है जब कर्म होता है, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो ये एक तरफ की बात है कि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ वो होता है, निश्चित है। लेकिन और एक बात भी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भाग्य पर आधारित नहीं है, ये भी एक बात है। सब कुछ निश्चित नहीं है हमारे जीवन में, कुछ चीजें निश्चित हैं भाग्य के आधार पर, कर्मों के आधार पर। सब कुछ निश्चित नहीं है। अगर सब कुछ निश्चित होता तो हम लोग रोबोट्स हो जाते हैं, है ना? जैसे रोबोट्स बनते हैं, उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, वो वही बोलेगा, वो वही करेगा, वो इतने ही समय पांव उठाएगा, इतने समय वो करे, सब रोबोट्स। हम कल बता रहे थे आपको कि आजकल होटलों में रोबोट्स बनाए गए हैं, तो वो रोबोट आपका स्वागत करते हैं, वो कोई स्वागत नहीं कर रहे, उसको प्रोग्राम किया गया है। अगर उसका प्रोग्राम खराब हो जाए तो आपको खैर चलने दीजिए। तो हम लोग रोबोट्स हो जाएंगे, फिर हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? अभी हमने बताया भगवान ने स्वतंत्रता दी है, तो फिर स्वतंत्रता क्या है जब सब कुछ निश्चित है? हमें पता है कि हमें संडे को मंदिर जाना है, अगर भगवान भाग्य में लिखा है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना? इसीलिए लोग बोलते हैं लोगों को कि प्रभु जी आप मंदिर आइए, जब भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे, अब भगवान इच्छा करेंगे आपके लिए कि आप मंदिर आए। तो ये दोनों बातें जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खतरनाक चीज़ है जो लोग कहते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में निश्चित है, सब कुछ पहले से होता है। नहीं, ये गलत है। सब कुछ हमारे जीवन में निश्चित नहीं है, हमें स्वतंत्रता है। किस चीज़ की? जब स्थितियां सामने आए तो उन पर हम कैसे प्रतिक्रिया करें। उदाहरण देते हैं, आपको कोई लाकर 1,00,000 रुपया देता है, वैसे दे तो आप यहाँ ले आइएगा मंदिर में, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई 1,00,000 रुपया लाके देता है, ये भाग्य की बात है, ये आपके पूर्व कर्मों के अनुसार आपको 1,00,000 रुपया मिला। अब आप उसका क्या करते हैं ये निश्चित नहीं है, ठीक है? आप उस 1,00,000 रुपये को ले जाकर कहीं गोवा में बहुत सारे कसिनो हैं, बहुत सारे खाने पीने के स्थान हैं, एक ही दिन में खत्म करके आ सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, या फिर मंदिर में आकर उसको अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा। ये 3 चॉइस आपकी हैं और ये स्वतंत्रता है। तो इसलिए उसको कोई छीन नहीं सकता। ये निश्चित नहीं है कि इस एक लाख को आप यही काम करेंगे तो फिर तो सारा रोबोट हो गया, मतलब सब कुछ प्रोग्राम है। आपको 2:20 पे 1,00,000 रुपया मिलेगा, आप 1,00,000 रुपया मिलते ही यहाँ से गोवा जाएंगे, गोवा जाकर बाद में वहां, ये कुछ ये फिक्स है। तो इसलिए इस बात को समझिए कि हमारे जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है। अगर सब कुछ निश्चित होता तो भगवान भगवद गीता क्यों देते हैं? क्या कारण है भगवान को कहने का कि ये करो वो करो? सब कुछ निश्चित है, मालूम है ये करने वाला ही नहीं है तो फिर क्या जरूरत है देने की? भगवान ने इसीलिए दिया कि सब कुछ निश्चित नहीं है। शास्त्र को पढ़कर, भक्ति को प्राप्त करके हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं, हमारे कर्म बदले जा सकते हैं केवल भक्ति के द्वारा। इसका एक उदाहरण हम कई बार देते हैं, फिर से दोहराते हैं। कर्मों के अनुसार किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाती है, कोई बदल नहीं सकता उसको, उसने हत्या की है, पापी है ये, इसको हत्या हो, इसको फांसी की सजा देनी है। वो व्यक्ति एक एप्लीकेशन केवल लिखता है भारत के राष्ट्रपति को कि मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए। अगर भारत का राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है कि ठीक है इसको छोड़ दो, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है पूरे भारत में पूछने का कि आपने ऐसे पापी व्यक्ति को कैसे छोड़ दिया। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, आप जानते हैं ना, ये भारत में ये प्रथा, ये नियम कानून है। तो इसी तरह ये कानून प्रकृति का है कि हमने अपने पूर्व जन्मों के कारण बहुत सारे पाप किए हैं, हमें बहुत सारा कष्ट मिलना है, दंड मिलना है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, अर्थात कृष्ण के पास जाते हैं जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और उनको एक एप्लीकेशन देते हैं भक्ति के द्वारा कि ठीक है मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, लेकिन अब आपकी शरण में आया हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान का साइन हो गया, छूट गए। किसी को अधिकार नहीं है ब्रह्मांड में पूछने का कि कैसे छोड़ दिया इस पापी व्यक्ति को आपने। तो ये कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का प्रश्न था यहाँ? ओह अच्छा, ये छोटी बहन, आपका प्रश्न है? अच्छा, हैंडराइटिंग देख के लग रहा है आपका ही प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है जी, जगन्नाथ जी को 56 भोगी क्यों लगाए जाते हैं, 108 क्यों नहीं, 256 क्यों नहीं? ये तो हमने पूछा ही नहीं कभी जगन्नाथ जी से। अगर हम लोग 108 लगाते तो प्रश्न आता कि 108 ही क्यों लगाए जाते हैं। 56 भोग ये प्रथा चली आ रही है, ये जो 56 भोग की प्रथा है जगन्नाथपुरी में विशेषतः जो नियम चल रहे हैं, ये कई कई वर्षों से, हजारों वर्षों से नियम चले, जैसे ये बदलने की प्रथा नव कलेवर कहीं और नहीं होता, केवल जगन्नाथपुरी में होता। तो इसीलिए ऐसी कुछ प्रथाएं हैं तो ये बनती जा रही हैं, इसीलिए 56 भोग अभी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन आपके लिए कोई रोक नहीं है, आप भगवान को 108 लगा सकते हैं। और इस जन्माष्टमी पर हम लोग भगवान को जोर से माता जी तो बिल्कुल नहीं बोल रहे, बनाना उनको पड़ेगा ना। और यहाँ के लोग भी नहीं बोल रहे कि हमें क्या फर्क है, हमें थोड़ी बनाना है। आप लोग दोनों को बनाना चाहिए, प्रभु जी इसको भी बना। आप में से कितने लोग कुकिंग करते हैं प्रभु जी इसमें, माता जी में नहीं? हाथ ऊपर कीजिए कि इनको कुकिंग आती है थोड़ी बहुत भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे बहुत अच्छा। तो इस जन्माष्टमी को आप लोग भी भोग बनाइए। तो इस जन्माष्टमी को हम लोग भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म दिवस पर 1008 भोग बनाने की तैयारी में है। और ये सब संभव होगा, 56 नहीं केवल, हाँ जिसका भी प्रश्न था, तो ये सब संभव होगा जब आप सब मदद करेंगे। तो आप सबके लिए उस दिन अनुमति होगी कि आप सब आकर भोग बनाएं यहाँ या अपने घर से बना कर लें। देखिए 1000 भोग कोई ज़्यादा नहीं है, आप लोग कितने लोग यहाँ बैठे हैं, और बहुत सारे लोग भी आते हैं मंदिर में। अगर कोई 5-5, 6-6 भोग भी बनाएंगे तो आराम से हो जाएगा 1008। तो 1008 भोग भगवान को लगने चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस वर्ष जगन्नाथ जी को जन्माष्टमी के अवसर पर 1008 भोग की तैयारी माता जी लोग अभी से शुरू कर सकते हैं, एक महीना बाकी है। हाँ, अभी से बना के मत रखिएगा, अभी से तैयारी कर दी, बना कर रख दिया, वो जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए, ऐसे उत्सवों में आनंद आता है, क्योंकि अभी से सोचने लगेंगे कौन क्या बनाएगा, कैसे होगा, सारा समय कृष्ण में जाएगा। हमारी तो इच्छा है कि जन्माष्टमी के बाद हर महीने ऐसा एक उत्सव हो, 1008 नहीं, लेकिन कम से कम 108, 56 भोग तो लगा सकें जगन्नाथ जी को। वहाँ रोज लगता है या महीने में एक बार, और 56 भोग कोई बड़ी बात नहीं है ना, केवल 10 माता जी 5-5 भोग बनाए, 50 हो जाएगा, 6 हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, है ना, 56 भोग। लेकिन वो बाद में, अभी केवल जन्माष्टमी के लिए आप सबसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मदद कीजिए 1008 भोग बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा बनाना, इतना इतना आप सब घर से बनाकर ला सकते हैं। यहाँ पर हम मिट्टी के वो प्लेट्स मंगा रहे हैं 1008, और एक भी प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए, और हाँ, एक आइटम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को नहीं तो पता चला कि वो माता जी भी गुलाब जामुन बना के लाए, वो भी गुलाब जामुन, वो भी गुलाब जामुन, 50 आइटम केवल गुलाब जामुन के हैं। ऐसे नहीं, 1008 में से एक भी आइटम रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, जैसे राइस होते हैं तो राइस के कई वैरायटी हो सकती हैं, आप पुली वगैरह बना सकते हैं, आप लेमन राइस बना सकते हैं, बैंगन राइस बना सकते हैं, भिंडी राइस बना सकते हैं, पता नहीं और कौन कौन से राइस होते हैं तो उनको बना सकते हैं, लेकिन 1008 भोग जन्माष्टमी पर होने चाहिए। ये माता जियों की जिम्मेदारी है, अभी उनके लिए एक चुनौती है कृष्ण की तरफ से, देखते हैं वो लोग बना पाएंगे कि नहीं। सब गिने जाएंगे अंदर जाने के पहले, लेकिन आप लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है सुनने में 1008, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। 4-4, 5-5, 6-6 भोग आप लोग बनाएं, एक लिस्ट बनाएं कौन कौन बनाएंगे, और ये हो जाएगा। और हमें निश्चित है, यहाँ के भक्तों में इतना अच्छा उत्साह है कि निश्चित इस बार 1008 भोग तो भगवान को लगेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब प्रार्थना कीजिएगा, अगले रविवार को हम लोग इस समय जगन्नाथ जी के धाम में, जगन्नाथपुरी में होंगे अगले रविवार, और जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे होंगे, तो आप सब यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कीजिएगा जगन्नाथ जी से कि हम लोग अच्छी तरह रथ को खींच सकें, रथ की रस्सी को हाथ लगा सकें। कल वहाँ पर एक दुर्घटना भी हो गई, और हर साल होती है, तो वहाँ पर लोग भागते हैं रथ की रस्सी को हाथ लगाने, कई लोग पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा आप सब कि हम लोग अच्छी तरह से, और यहाँ आके प्रार्थना कीजिएगा, घर में बैठकर प्रार्थना मत कीजिएगा। यहाँ प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, बेलगाम से वरिष्ठ भक्त आएंगे, प्रवचन होगा, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि आज छुट्टी दे दी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय आपका भक्तों का हार्दिक स्वागत है, ये कुछ सूचनाएं हैं। इससे सर्वप्रथम आप सभी भक्तों का एक बार उच्च स्वर में हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस बार भी प्रति सप्ताह की तरह सोमवार को महाभारत की कथा, यानी कि कल महाभारत की जो कथा है वो जारी रहेगी शाम को 6:30 बजे से। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, सब परिवार अपने घरों के साथ उसमें पधारिए। साथ ही में जन्माष्टमी का जो महामहोत्सव है, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, तो इसकी तिथि आज से 4, 5 और 6 सितंबर को इन 3 दिवसों में कार्यक्रम होगा, और ये कार्यक्रम बहुत ही बड़े स्तर पर होगा। भगवान का आगमन होगा 5 तारीख को, जन्माष्टमी का जो मेन फेस्टिवल है, तो भगवान का जो आगमन होता है तो उनके साथ भक्तों के लिए बहुत सारी सेवाओं का अवसर भी आता है। तो आप सभी भक्तों के लिए भी कारोबार में भगवान की सेवा का बहुत सुअवसर है। जिस दिन जन्माष्टमी होगी, इन 3 दिनों जो फेस्टिवल होगा उसमें हम लोगों ने सोचा है कि भगवान को 3 दिन नई ड्रेसें पहनाई जाएंगी, तो उसमें आप सभी भक्त लोग सहयोग कर सकते हैं और वैसे स्पॉन्सर करके, साथ ही में अभिषेक में भी कुछ सेवाएं होंगी तो अभिषेक में भी आप भक्त लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके साथ तीनों दिन प्रसादम होगा, प्रसाद की व्यवस्था के लिए भी, और साथ में पूरे मंदिर को और ऑल्टर को खास रूप से फूलों से सजाया जाएगा, तो उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। ये जो सभी सेवाएं हैं उनकी लिस्ट अगले सप्ताह तक नोटिस बोर्ड पर लग जाएंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। और अंत में हम अपने संडे के स्पॉन्सर हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पर आए और अपना प्रीति उपहार स्वीकार करें। इस बार का जो संडे फीस्ट है वो स्पॉन्सर किया है श्रीमान अप्पा पेंडेकर जी ने, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके यहाँ पर आइए और अपना स्वीकार अपना पुरस्कार स्वीकार कीजिए। सही भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे उनके और उनके परिवार के लिए, जहाँ भी रहे भगवान की सेवा में लगे रहे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कीर्तन होगा, फिर कीर्तन के बाद सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था।
तो आप सब जन्माष्टमी की तैयारी कीजिए, हर रविवार कृष्ण कथा होती रहेगी और जन्माष्टमी पर बहुत सारी सेवाएं हैं। 3 दिन का उत्सव है, 4, 5 और 6। वृंदावन से परम पूज्य वैष्णव महाराज यहां पर आएंगे, पिछले वर्ष की तरह 3 दिन कथा होगी, तो आप सबके लिए बहुत सारी सेवाएं भी हैं। तो आप अभी से तैयार हो जाइए और 1008 भोग की चुनौती आप लोग स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण।
Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. का नाम पावन है वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री प्रभुपाद की जय प्रेमानंदे हरे कृष्ण।